मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 29 मार्च 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही जरूरी विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं और सच पूछिए तो यह जो विषय है हम लोगों के जीवन के हर पल से जुड़ा हुआ विषय है, या यूं कह लीजिए कि इस विषय का प्रभाव हमारे जीवन के हर मोमेंट पर पड़ता है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारा हर मोमेंट इस चीज से प्रभावित होता रहता है। इसे यदि आप शीर्षक देना चाहें तो आप एक अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं और वो है अपनी पहचान को पहचाने। हालांकि ये बड़ा आपको उटपटांग सा शीर्षक लगा होगा कि अपनी पहचान को पहचाने, भला ये भी कोई शीर्षक है? हम तो जो कुछ भी हैं अपने को अच्छे तरीके से पहचाने ही रहते हैं, तो फिर उसे और क्या पहचानना। लेकिन मित्रों, डेफिनेटली कुछ न कुछ तो समस्या है, तभी मैंने इस पर बात करने का निर्णय लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि यह समस्या आपके साथ न हो या उतनी न हो कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती हो। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज की भी शुरुआत में कल के जो गीता के प्रसंग की चर्चा कर रहा था उसी को लेते हुए करूंगा और मैं बिल्कुल शुरुआत से आपके सामने बात रख रहा हूं, जिसके बारे में देखिए आप सब जानते भी हैं कि गीता की मूल समस्या क्या थी और वह गीता के आरंभ होते ही हमें दिखाई देती है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आया हुआ है और फिर कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं दोनों सेनाओं का एक बार सर्वेक्षण करना चाहता हूं, दोनों ओर देखना चाहता हूं। कृष्ण रथ को बकायदे दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। अर्जुन फिर जब सामने वाली पार्टी दल की तरफ देखता है तो बाप रे, वहां गुरु द्रोणाचार्य हैं, वहां भीष्म पितामह हैं, उनके अपने पता नहीं कितने परिचित और रिश्तेदार हैं और फिर अर्जुन को लगता है कि इसका मतलब है कि युद्ध में ये सब के सब मेरे हाथों मारे जाएंगे और फिर उसका मन कमजोर पड़ जाता है और कृष्ण से सीधे सीधे कहता है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप उस अंश को पढ़ करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा कि जब कृष्ण कहते हैं भाई क्या हो गया तुमको, क्यों युद्ध नहीं करोगे, तो फिर अर्जुन बड़े उल जलूल से तर्क देता है। मैं तर्कों की बात यहां नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो बड़ी मजेदार तर्क देता है, आपको भी सुनकर शायद हंसी आ जाए, मुझे तो बताने में हंसी आ गई। लेकिन देखिए, जब होता यह है कि हम किसी भी बात को सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे तरीके हास्यास्पद ही क्यों न कितने हो जाएं, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं। तो अर्जुन भी लगभग अपनी बात रखता है और पूरी की पूरी गीता कृष्ण को कहनी पड़ गई अर्जुन को समझाने के लिए कि भैया तुम ये फैसला मत करो, तुम जाओ और युद्ध करो। तो देखिए, सामान्यतया जब हम गीता की व्याख्याएं पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को यही मिलता है कि अर्जुन को अवसाद हो गया था, जिसे आप कह लीजिए डिप्रेशन में आ गया था, उसको भ्रम पैदा हो गया था, उसको मोह पैदा हो गया था, इस तरह की बातें हम करते हैं। नो डाउट कि इनमें भी कुछ न कुछ सच्चाई तो है, लेकिन मैं इस सच्चाई को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। इसमें भी आप कह लीजिए कि थोड़ी सी सच्चाई होगी, तो मैं अपनी सच्चाई जो मैं देख पा रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि अर्जुन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई। देखिए, अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में आया था तब मैं यदि आपसे एक प्रश्न करूं कि वह किस रूप में आया था, बकायदे हाथ में गांडीव लिए हुए था, कवच पहने हुए था, एक सैनिक को या एक योद्धा को कह लीजिए, योद्धा ही हम अर्जुन के लिए कहें, एक योद्धा को जिस तरीके से युद्ध में पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिए, उसी तरह से अर्जुन तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में आया था। रथ में बैठा हुआ है, हाथ में गांडीव धनुष है, रथ का परिचालन कृष्ण जैसा दार्शनिक व्यक्ति कर रहा है और वो लड़ने के लिए आया था। यानी कि यहां जो अर्जुन आया है वो पूरी तरह से एक योद्धा के रूप में आया हुआ है। मेरी समझ से इसके बारे में आप लोगों के मन में भी कोई संदेह नहीं होगा, राइट? लेकिन जैसे कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं और अर्जुन जब दूसरे दल की तरफ देखता है तब उसे फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने दूसरे रिश्तेदार दिखाई देते हैं, राइट? और उनको देखने के बाद वो कमजोर पड़ जाता है। इसकी व्याख्या आप किस तरीके से करेंगे? इसकी व्याख्या सामान्यतया मोह के रूप में की जाती है कि यानी कि जब उसने अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने गुरु को देख रहा है, भीष्म पितामह को देख रहा है, तो उसके मन में ये भय पैदा हुआ या मोह पैदा हुआ कि मैं अपनों को ही मार डालूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। और बकायदे वो ये सारी बातें कृष्ण के सामने रखता है। मैं समझता हूं कि इसे थोड़ा सा और दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है, और वह एंगल ये है कि देखिए, अर्जुन आया था योद्धा के रूप में, यानी कि उसकी जो पहचान थी, उसकी जो आइडेंटिटी थी उस युद्ध क्षेत्र में, एक योद्धा की आइडेंटिटी थी। लेकिन जैसे ही वह अपने लोगों को देखता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है अब योद्धा से गायब होकर के रिलेशन वाली आइडेंटिटी बन जाती है, यानी कि वह उनका संबंधी बन जाता है, रिलेशन में उनसे स्थापित कर लेता है। किसी को वो गुरु मान लेता है, किसी को पितामह मान लेता है, किसी को कुछ और मान लेता है, किसी को कुछ और मान लेता है, यानी कि अब वो योद्धा न रह करके भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, जो भी कह लीजिए, वो बन गया। तो जब वो योद्धा था तो उसे किस रूप में अपनी आइडेंटिटी रखनी चाहिए थी? योद्धा के रूप में। लेकिन अब वह अपनी योद्धा की आइडेंटिटी को गायब करके रिलेशनशिप की आइडेंटिटी में आ गया है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जब मुझे यही पता नहीं होगा कि मैं हूं क्या, तो सीधी सी बात है कि मैं कैसे सही निर्णय ले सकता हूं कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मुझे करना तो वही चाहिए जो मैं अभी हूं। अर्जुन अभी योद्धा था तो युद्ध करने के लिए आया था, उसके दिमाग में कोई बात नहीं थी। लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी धीरे धीरे विलय होती चली गई, गायब होती चली गई, और उसकी जगह एक नए पहचान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, तो अब जो उसकी आइडेंटिटी हो गई है उसके आधार पर वो निर्णय लेगा। अब चूंकि भाई बंधु की आइडेंटिटी हो गई है तो अब निर्णय योद्धा की तरफ कैसे लिया जा सकता है? अब तो आप भाई बंधु की तरह ही निर्णय लेंगे ना। और भाई बंधु अगर है तो हम इसी तरह का निर्णय लेंगे कि भैया अपनों से क्या लड़ना, इनको क्या मारना, इनको मारने से मिल भी क्या जाएगा, ये निर्णय लेंगे। यानी कि जो अर्जुन के निर्णय में जो बिल्कुल 360 डिग्री का हम परिवर्तन देखते हैं, उसका सिंपल सा एक कारण मुझे दिखाई देता है, और भैया कि अर्जुन उस समय अपनी आइडेंटिटी को भूल गए, अपनी पहचान को भूल गए। और जैसे ही मित्रों हम अपनी पहचान को भूलते हैं, याद रखिए कि हमारे व्यवहार, हमारे काम, हमारी बातचीत, हमारे एक्शन, हमारी सारी चीजें अकॉर्डिंगली बदल जाती हैं, यानी हमारी पहचान के हिसाब से उनमें परिवर्तन होते जाते हैं। कभी आप इसको वाच करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और यह हमारी जो आइडेंटिटी, याद रखिए, एक जैसी नहीं होती, हमेशा बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अफसर है, सरकारी दफ्तर में जाता है तो वो अफसर की आइडेंटिटी में रहता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद क्या उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल लेनी चाहिए? अब वो अफसर नहीं है, अब वो सचिवालय में नहीं बैठा हुआ है, अब वो अपने घर में है। वहां वो अफसर हो सकता है, वहां वो सेक्रेटरी या जो भी उसका पद है हो सकता है, लेकिन यहां आने के बाद तो अब वह किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, पड़ोसी का पड़ोसी है, यह हो गया है। लेकिन अगर कल्पना करके देखे कि अभी भी वह अपने उस अफसराना आइडेंटिटी में रहे, जो बहुत से लोग रहते भी हैं, तो उसका जो व्यवहार है वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और दूसरे लोगों के साथ कैसा होगा? इसका मतलब है कि उसकी आइडेंटिटी तो बदल गई है, लेकिन यहां उसने अपनी आइडेंटिटी को बदला नहीं है, यानी कि अब यहां वह अपनी पहचान को सही तरीके से पहचान ही नहीं पा रहा है, वह अपनी पुरानी पहचान में खोया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट अपने घरों को छोड़कर और शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं, राइट? कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में जाते हैं। अब आप देखिए कि उनके सामने प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आप उनके मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम का विश्लेषण करें तो वहां वो गए हैं एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में। तो आप अपनी उस पहचान को रखिए, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं अपने विद्यार्थी के आइडेंटिटी को गायब कर देते हैं, फिर क्या बन जाते हैं? आप वहां अपने घर की तलाश करने लगते हैं। माता पिता, मेरे भाई बहन इस तरीके से थे, वहां आपका घर नहीं है, आप स्टूडेंट होकर के गए हैं, तो आप स्टूडेंट के रूप में रहिए कि मैं यहां पढ़ने आया हूं, सीखने आया हूं, और यहां की हर चीज से मैं सीखूंगा, मैं कोचिंग से सीखूंगा, मैं कॉलेज से सीखूंगा, मैं वहां के समाज से सीखूंगा, मैं वहां के बाजार से सीखूंगा, मैं वहां के संघर्षों से सीखूंगा, मैं वहां के अपने जो दोस्त होंगे उनसे सीखूंगा, मैं हर तरीके से सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां मेरी एकमात्र जो आइडेंटिटी है वो स्टूडेंट की आइडेंटिटी है। लेकिन मैं वहां अपने रिश्तेदारों की तलाश करने लगता हूं, अपने गांव की तलाश करने लगता हूं, प्रेम की तलाश करने लगता हूं, अपने खालीपन को भरने के लिए पता नहीं मैं किन और चीजों की तलाश करने लगता हूं। तो पता लगा कि जो मेरी आइडेंटिटी थी उसको मैं एक समय के बाद पूरी तरह से भूल चुका हूं और इन फालतू की तलाशों में लग गया हूं। ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की जिज्ञासा हाथ से गायब हो चुकी है और वही सही मायने में हमारी जिंदगी की असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। मित्रों, इस पर आप लोग विचार करके देखिए, इसको आजमाइए, आपको इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा और आपको इतना मजा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बस थोड़ा सा अपनी पहचान को हर समय पहचानने की कोशिश करते रहिए। ये भ्रम में, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि नहीं नहीं मैं तो हमेशा पहचानता ही हूं, मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं होती। सवाल ही नहीं है, जब अर्जुन के साथ गड़बड़ी हो सकती है और एक ऐसे अर्जुन के साथ जिसके साथ हमेशा कृष्ण जैसा दार्शनिक है, अगर वो गड़बड़ कर सकता है दोस्तों, तो आप और हम तो अर्जुन और कृष्ण के सामने क्या है। तो मानकर चलना चाहिए कि हमसे गलतियां होंगी, गड़बड़ियां होती रहती हैं। कोशिश ये करें कि ये गड़बड़ियां, ये गलतियां कम से कम हो ताकि जिंदगी अधिक से अधिक बेहतर हो सके। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आज जैसा कि मैंने कहा, शुक्रवार है, दो दिनों तक अब आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और दूसरे विषयों पर ढेर सारी बातें होंगी। दोस्तों, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।